फिर इसके बाद अब अगली आयत बड़ी अहम है जो इस पारे की आखिरी आयतों में से, और इसी का ताल्लुक से फिर अगला हिस्सा शुरू होगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, इस्लाम ने शादी ब्याह हलाल हराम के जो कवानीन दिए हैं उसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं। अब यहाँ से उन औरतों की लिस्ट दी जा रही है जिनसे निकाह हराम है। क्यों हराम है, क्यों ली जा रही है? आप देखिए कि घर में रहते हुए माँ भी होती है, बहन भी होती है, फिर ऐसा ऐसा आप देखें तो घर में दादी फूफी, फिर बाज़ दफ़ा आप देखिए कि कुछ और दूर की रिश्तेदार आ जाती हैं। हालात ऐसे होते हैं कि एक घर में अब शौहर बीवी तो नहीं है, जब ख़ानदान बढ़ता है और एक्सटेंडेड फैमिली होती है तो कई रिश्ते आते हैं। अब अगर घर में हर वक्त कुछ इस किस्म के चांसेस हों कि बहन से भी शादी हो सकती है, फूफों से भी हो सकती है, दादी से भी, तो आप ज़रा इमेजिन तो कीजिए घरों का माहौल कैसा होगा। सिर्फ इसी पर ही ले लीजिए, आप कुरान सुनने आई, अल्लाह ताला सबको फितनों से बचा के रखे, अब घर में जवान बच्ची भी और बच्चे भी हैं तो आपको खतरा ये पड़ा रहा है कि बेटी और बेटा घर में है, तो अल्लाह ताला ने इस जज्बाती हिजान इमोशनल अपसेटनेस से बचाने के लिए करीब रहने वाले कुछ रिश्तों से निकाह हराम कर दिया। यहाँ से आपको इस्लाम का मिजाज दिखेगा, ये जिंदगी जो हमें मिली है ये सेक्स के लिए नहीं, ये लस्ट के लिए नहीं है। शादी जो की जाती है वो एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए और नस्लों के बढ़ाने के लिए की जाती है, लेकिन जब हर वक्त सेक्स और इस तरह की गंदगी बाहर से नजर आती है तो बाज़ दफ़ा ये रिश्ते भी मशकूक होने लगते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि क़यामत के करीब महरम रिश्तों में जिना ज़्यादा होगा। तो आइए ज़रा से इस लिस्ट को पढ़ते हैं, और मैं तो जब भी इसको पढ़ती हूँ दिल की गहराई से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने हमें इतने पाकीज़ा मज़हब में रखा। वरना यदि आज अगर आप थोड़ा सा खुल के इस वेस्टर्न कल्चर को देखें तो किसी ने एक औरत से पूछा, नॉन मुस्लिम थी, कि ये तुम लोगों का क्या कानून है कि 17-18 साल की होते हुए बेटी को खुद घर से निकाल देते हो, बस पाल लिया बहुत, अब जहाँ जाओ बेटे भी चले जाते हैं, बेटियों को भी। कहा इसलिए कि जब मेरी बेटी जवान होगी और उसी घर में होगी जिसमें मैं हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो मेरा शौहर सिर्फ मेरा ही शौहर रहेगा या उसका भी बन जाएगा। अब ये बात तो हद से बड़ी भी लगती है, हो सकता है सारे ऐसे भी ना हो लेकिन चांसेस हैं, और ये देखा गया। खबरें आप पढ़ लीजिए, बातें तो बहुत सारी हैं, इस वक्त करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फ़िलहाल हम इस्लाम की इस खूबसूरत बाँट को देखते हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व खवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम, तुम पर हराम की गई तुम्हारी माएँ, बेटियाँ, बहनें, फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और तुम्हारी दूध शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ और तुम्हारी बीवियों की लड़कियाँ जिन्होंने तुम्हारी गोदों में परवरिश पाई हो, उन बीवियों की लड़कियाँ जिनसे तुम्हारा ताल्लुक है जनो शो यानी शोहर बीवी का ताल्लुक हो चुका हो, वरना अगर सिर्फ निकाह हुआ हो और ताल्लुक है जनो शो ना हुआ हो तो इन्हें छोड़कर इनकी लड़कियों से निकाह कर लेने में तुम पर कोई पकड़ नहीं, और तुम्हारे इन बेटों की बीवियाँ यानी बहुएँ जो तुम्हारी सुल्फ से हो यानी सगे बेटों की बीवियाँ, और ये भी तुम पर हराम किया गया कि एक निकाह में दो बहनों को जमा करो मगर जो हो चुका सो हो गया, ये नोट करें, इल्ला मा कद सलफ, हमारे दीन का खूबसूरत असूल है, गड़े मुर्दे ना खेड़ो, पिछली जिंदगी की गलतियों को ना दोहराओ, पिछले ताने ना दो। हिदायत पे आने से पहले जिंदगी में बहुत सारे गुनाह हो चुके होते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं तुम उसको छोड़ो, अब आइंदा से इस्लाह कर लो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है, और वो औरतें भी तुम पर हराम है जो किसी दूसरे के निकाह में हो। यहाँ से अब आप देखिए वाव से आयत शुरू हो रही है ना, 23 पे पारा खत्म, इसीलिए मैंने इसको पीछे को आज साथ ही लिया। हम इतनी जोश में बातें कर रहे थे और पिछले पारे में कल हमने पूरी उम्मत और नस्ल और बाहर के फितनों को देखा। चूंकि सूरत निसा का मिजाज एक है, अगर ये चंद आयतें जो आज पिछले हिस्से की मैंने पढ़ी हैं कल पढ़ ली जाती तो आप इसको कभी भी समझ नहीं सकते थे, तो कुछ सूरतें ऐसी हैं कि जिसको एक स्ट्रेच में समझें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। अब ये पूरी लिस्ट बयान की, इस लिस्ट में दो चीज़ें हमें हदीस से मिलती हैं और वो है खाला भांजी और फूफी भतीजी। यानी जब तक खाला किसी मर्द के निकाह में है, जिंदा है, तो उस मर्द से जिसको हमारी ज़ुबान में खालू कहते हैं उससे निकाह नहीं हो सकता। लेकिन याद रखिए कि खाला की मौत तलाक की सूरत में निकाह फिर हो सकता है। फिर इसी तरह फूफी और भतीजी एक शख्स के निकाह में नहीं होती, ये दो चीजें इस लिस्ट में नहीं है। अदरवाइज आप देखिए पूरी लिस्ट है, खून के रिश्ते भी, दूध के रिश्ते भी, सहर के रिश्ते भी हैं। अब इसके बाद एक मर्द का निकाह किससे नहीं हो सकता, वल मुहसनात मिनन निसा, बस यहां रुक जाए, और हर शादीशुदा औरत से। मुहसना लफ्ज जहां आपको बार बार दिखेगा सूरत निसा में, निकाह में कैद औरत, यानी जब एक औरत किसी के निकाह में आ जाती है तो वो महफूज हो जाती है, उसकी इज्जत इस्मत जो है वो बच जाती है, कुछ दूसरा मर्द उसकी तरफ अमूमी तौर पे सोचता भी नहीं है, तो यहाँ मुराद है शादीशुदा औरतें। आप देखिए, जब एक औरत किसी मर्द के निकाह में आ जाती है, लड़की है या औरत है, दूसरे किसी मर्द के लिए उसके बारे में सोचना, ख्याल करना, ये बिल्कुल हराम है। हो सकता है शादी से पहले लड़की की कहीं नजरें हों, किसी से उसकी दोस्ती हो, नहीं हुई शादी, नई हालात बने, अब जब वो लड़की किसी दूसरे मर्द की बीवी बन गई है, अब किसी दूसरे मर्द के लिए सोचना, कोई माजी की मोहब्बत, किसी का उस लड़की के लिए सोचना, शादी की हो गई, फिर उधर तलाक की कोशिशें, फिर खुदकुशी की कोशिशें, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तो हर शादीशुदा औरत दूसरों के लिए हराम है। हाँ, मगर एक एक्सेप्शन है, और वो कौन सी? अलबत्त ऐसी औरतें इससे मुस्तस्ना है जो जंग में तुम्हारे हाथ आए। ये अल्लाह का कानून है जिसकी पाबंदी तुम पर लाजिम कर दी गई। ये कौन सी औरतें? जो जंगों में लड़ने आती थी, शादीशुदा होती थी, अपने घरों में से जब वापस आती थी तो जंगों में लड़ने आई, अब जंग में हार गए। अब जैसे बाकी चीजें मुसलमानों के हाथ में आई, अगर अल्लाह ना करे मुसलमान हारे तो काफिरों के हाथ में आई, तो उसमें मर्द भी होते थे, औरतें भी होती थी। मर्दों को गुलाम कहा जाता था, औरतों को लौंडियां कहा जाता था। अब इनके लिए क्या किया जाए? आज के दौर में देखिए, जो औरतें जंगों में सियासी कैदी बन के आती हैं, टॉर्चर सेलों में रखी जाती हैं, कई कई मर्द उनके साथ अपनी हवस पूरी करते हैं, ना उनकी कोई इज्जत ना कुछ। इस्लाम से पहले यही कुछ था। अल्लाह सुबहाना ताला ने एक इतने खूबसूरत तरीके से इस इशू को हल किया। हालांकि आज इशू नहीं है कि लौंडी और गुलाम, लेकिन कुछ लोगों के जहनों में बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं कि जी इस्लाम में लौंडियों की इजाजत क्यों है। तो समझ लीजिएगा, इस्लाम ने लौंडियों को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, बल्कि ऐसे मैयर्स और ऐसे कवानीन बनाए जिसकी वजह से आज आपको लौंडी और गुलाम नहीं दिखते, और ये दुनिया में किसी वक्त भी शुरू हो सकते हैं। जितनी बड़ी हकीकत जंग है, उतनी ही बड़ी हकीकत जंगी कैदी भी है। तो जंगी कैदियों में जहां मर्द आते हैं, वहां औरतें भी आती थी। जैसे निकाह की सूरत में एक बाप अपनी बेटी का हाथ एक गैर मर्द के हाथ में देता है, जिसमें हक महर और इजाबो कबूल होता है, बिल्कुल इसी तरह जो मुसलमान हुक्मरान, जो लीडर होता है, वो अपनी मर्जी से किसी भी सिपाही को दूसरी जो जंग में आने वाली औरत है वो हाथ में देता है कि अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। ये किस्म का इस्टेब्लिशमेंट है उन औरतों का। आप देखिए ना, अगर 50-60 औरतें एक सोसाइटी में आ गई, क्या करें उनको? क्या करें? आप उनको माए बना दें, अब माँ बन गई, बहनें बना दें, बीवियां बना दें, तीनों सूरतें मुमकिन नहीं, क्योंकि इस्लाम फर्जी रिश्तों को नहीं मानता। और दूसरी बात है कि अगर माँ बहन बना के उनको घर में रख लिया, तो उन औरतों के दूसरे जिस्मानी तकाजे कौन पूरे करेगा? तो ये एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक है, जब आप इसकी तफसीर सुने। मुझे याद है कि सबीरुल जन्ना में हमने इसको काफी डिटेल से देखा था कि इस्लाम ऐसा नहीं चाहता। इस्लाम ने हर औरत के ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी, उसके घर के जो उसको एक जिम्मेदारी मिले, प्लस उसके जिस्मानी तकाजों को पूरा करते हुए इख्तियार दे दिया। इसके बाद आप देखिए निकाह क्या है। और आज याद रखिए, मुझे खौफ आ रहा है ये बात कहते हुए, आने वाली नस्लों ने ये भी कहना है, क्या फर्क पड़ता है मौलवी साहब नहीं आए, छोड़ो, बट मेक द डिफरेंस, कुछ नहीं होता, वो कबूल कबूल नहीं करना, हम खुद ही कह रहे हैं हम शौहर बीवी हैं। निकाह में क्या है? सिर्फ बोल ही तो है, मैं अपनी बेटी तो मैं इतने हक महर के बदले में देता हूँ, अकल में तो ये बात भी नहीं आती। एक औरत अभी तक हराम थी, ये दो चार जुमले बोल के वो औरत इतनी हलाल हो गई कि आप अपनी 15, 16, 18 साल से पाली हुई बच्ची जो वो किसी अजनबी के हवाले कर देते हैं कि जाइए आप इसको ले जाइए। तो ये बात भी तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे मानते हैं, तो बाकी चीजें भी इसी तरह से हैं। इंशाल्लाह इसको हम फिर कहीं देख सकते हैं। दूसरी बात एक और याद रखिए कि मत सोचिए कि हर आने वाली लौंडी बड़ी खूबसूरत 16, 17 साल की कोई हीरोइन नुमा औरत थी, कोई ऐसी नहीं थी। बूढ़ी थी, जख्मी थी, बेढंगी होती थी, जख्मों से चूर चूर आती थी। कई लोग इन आयतों पर कहते हैं, देखो अल्लाह ने कहा तो फिर हमारी घरों की मासियां भी ऐसी हैं, घर की मासी, घर का गुलाम, ड्राइवर इसमें नहीं आता, क्या अल्लाह कहीं जिना का हुक्म देगा? इतने तो अल्लाह ताला ने हमें प्यारे अहकामात दिए हैं, ऐसी चीज नहीं है। बल्कि अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ एक किस्म की रिहेबिटेशन की। गुलाम उस वक्त स्टॉक्स की तरह बिकते थे, अगर एकदम खत्म कर दिया जाता, आज के बाद कोई गुलाम नहीं, कोई लौंडी नहीं, तो कितनी बड़ी बड़ी शख्सियात मदीना में बैंकरप्ट हो जाती। जैसे लोगों ने शेयर्स खरीद के रखे होते हैं, उस दौर में लोग फालतू पैसों से गुलाम और लौंडियां खरीदते थे, फिर उनसे घरों में काम करवाते, मजदूरी करवाते और उनसे पैसे लेते। अब एकदम इस्लाम आता और कहता कि जी ये खत्म कर दो, तो सब डूबता। याद रखिए, इस्लाम का मिजाज यकायक नहीं है। ये जो फिल फौर भाग दौड़, रात में कुछ, दिन में कुछ, आज कुछ, कल कुछ, ये इस्लामिक स्टाइल नहीं है। आसानी से, आराम से सोसाइटी को कबूल कराया। आज देखिए अमेरिका में कितनी कोशिश की। अगर आप में से किसी ने थोड़ी सी भी यूएसए की हिस्ट्री पढ़ी है, 1865 में कानून पास करवाया गया कि आज के बाद कोई गुलाम नहीं होगा, लेकिन कागजों का लिखा दिलों पे लिखा नहीं जाता, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी बसों में ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल की जगह अलग होती है, इतना रेसिज्म, इतना तासुब है, काला बंदा किसी चीज़ को हाथ में लगा दे उसको फेंक देते हैं। तो इस्लाम ने गुलामी को बैन नहीं किया बल्कि लिक्विडेट किया और हजारों गुलाम आजाद करवाए। अल्लाह के नबी ने खुद गुलामों की आज़ादी को इतना बड़ा एक नेकी का काम पेश किया कि हजरत उस्मान कहते हैं कि मैं हर जुमे गुलाम आजाद करता था, किसी जुमे एक नहीं कर सका तो अगले जुमे मैंने दो किया। तो बहरहाल अल्लाह ताला की इन सारी बातों पे इंसान जब गौर व फिक्र करता है तो उसको समझ आती है कि ये बात बड़ी खूबसूरत है। और आप याद रखिए, अल्लाह से ज्यादा खूबसूरत कवानीन कोई नहीं दे सकता। वो चार शादियों का हुक्म है, वो मर्द की दूसरी शादी की बात है, अल्लाह ताला जिस बात को जानता है वो कोई दूसरा नहीं जान सकता। इसीलिए अब अगली आयतों में निकाह की बात है। यहां मैं हमेशा थोड़ा सा पॉइंट आउट करवाती हूं कि आप हाईलाइट कीजिए, पीछे लिस्ट थी किनसे नहीं हो सकता। अब वअहिल्ला लकुम मा वरा ज़ालिकुम से शुरू करके आयत के एंड और अगली आयत में निकाह हो सकता है तो उसकी क्या शरायत है, इसको अगर हम गौर से पढ़ेंगे तो इसमें निकाह की चार बुनियादी शरायत मिलेंगी, जिसमें हक महर है, इजाब व कबूल है, जिसमें घर बसाने का इरादा है। ये नहीं है कि भाई बस एक महीने के लिए शादी कर दो, पेपर मैरिज कर दो, 3 माह की शादी है, ये कुछ नहीं है। और वली के मौजूदगी, यानी बाप की रजामंदी के बगैर निकाह नहीं हो सकता। ये चार बुनियादी शरायत है, ये आप देखिएगा सिर्फ इस 1.5 आयत में हमें नजर आएंगी इंशाअल्लाह ताला। وَهِلَّ لَكُمَا وَرَا ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ। इनके माँ सिवा जितनी औरतें हैं इन्हें अपने अम्वाल के जरिए से हासिल करना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, बशर्ते के हिसारे निकाह में इनको महफूज करो, ना ये कि आजाद शहवत रानी करने लगो, फिर जो इस दवाजी जिंदगी का लुत्फ तुम इनसे उठाओ, इसके बदले इनके महर बतौर फर्ज के अदा करो। अलबत्ता महर की करारदाद हो जाने के बाद आपस की रजामंदी से तुम्हारे दरमियान अगर कोई समझौता हो जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, और अल्लाह ताला अलीम और हकीम है। अब हक महर कितना हो, हमारे यहाँ क्या कहते हैं, 33 रुपए। 33 रुपए में क्या आता है आज पाकिस्तान में, शायद एक वो की रोटी भी नहीं आती, एक तिक्का भी नहीं आता। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि हर एक को उसकी कुदरत के मुताबिक है। तो ये हक महर का इशू भी आज बहुत मिसअंडरस्टूड है, इसको पढ़ने पढ़ाने के लिए भी हमें इस्लाम को करीब से देखने की जरूरत है। असल में तो ना तो ये औरत की कीमत है और ना ये इस चीज़ की गवाही कि अच्छा तलाक हो गई तो कुछ देर औरत सर्वाइव करे, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक टोकन है। तो एक मर्द कमाई करता है लाखों में, लाखों में हक महर दे दे, हजारों है तो हजारों में दे दे, चंद सौ है तो चंद सौ दे। अब अगर एक मर्द है निकाह की तलब रखता है, उसको जरूरत महसूस होती है, लेकिन उसके पास इतना खर्चा करने को है ही नहीं है। आप कहेंगे हैं, मर्द का भी कोई खर्चा होता है शादी में? जी, इस्लामिक शादी में सारे का सारा खर्च मर्द का होता है। एक मर्द शादी करने से पहले अपनी बीवी को चाहे एक छोटे से कमरे, एक चार दीवारी में रखे या एक अलग घर में रखे, ये मर्द की जिम्मेदारी है। उस औरत ने बैठना किधर है, सोना किधर है, खाना पकाना, लेना देना, यानी उसकी हर जिम्मेदारी उस मर्द ने पूरी करनी होती है। आज हमारे यहाँ क्या कहते हैं, फलाने बेटी की शादी करनी है, क्या मैं उसको ज़कात में से पैसे दे दूँ? मैं कहती हूँ जिस दिन ये सवाल इस तरह बदलेगा कि फलाह ने अपने बेटे की शादी करनी है, मैं ज़कात में से कुछ पैसे दे दूँ, फिर समझ आएगी उम्मत को कि इस्लाम का मिजाज क्या है। इस्लाम ने शादी का कोई खर्चा औरत या लड़की या उसके घर वालों पे नहीं रखा। अल्लाह हिदायत दे उनको भी जो लड़की वालों से मुतालबे करते हैं, जहेज की लंबी लिस्टें मांगते हैं, और अल्लाह उन लड़की वालों को भी हिदायत दे कि जिनको अगर कोई कह भी दे कि हमने आपसे कुछ लेन देन नहीं करना, वो कहते जो मर्जी करें हमने देना, हमारी इज्जत की बात है। इस वक्त हमने घर घर खेलने को जिंदगी का मकसद बना लिया, इसलिए हम कोई बड़ा काम नहीं कर पा रहे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अब एक मर्द है वो नहीं कर सकता, अब मुतालबे बहुत है, एक आजाद घर की लड़की है, उसके बाप की भी ख्वाहिश होगी मतलब मेरी बेटी को अच्छे घर में ले जाए। तब एक ऑप्शन दी गई और वो क्या, वमल्लम यस्तती मिनकुम तौलनयन केहल मुहसिनात, और तुम में से जो शख्स इतनी कुदरत ना रखता हो कि खानदानी मुसलमान यानी आजाद औरतों से निकाह कर सके, इसे चाहिए कि तुम्हारी इन लौंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्जे में हो और मोमिना हो, यानी फिर इस सूरत में किसी की लौंडी से निकाह कर ले। आजाद औरत की निस्बत लौंडी के हकूक कम होंगे, उसका मालिक उसकी इतनी शरायत नहीं रखेगा, तो ये एक हल दिया गया। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक ही गिरोह के लोग हो, लिहाजा उनके सरपरस्तों की इजाजत से इनके निकाह करो। नोट कीजिएगा, एक लौंडी से कोई निकाह कर रहा है, यानी किसी की लौंडी से कोई निकाह करे तो उसके मालिक की इजाजत के बगैर नहीं कर सकता। कहाँ एक आजाद शरीफ घर की लड़की का निकाह बगैर बाप की मर्जी के हो। सही बुखारी की रिवायत है, ला निकाह इल्ला बी वलीजन, निकाह नहीं होता सिवाय वली की इजाजत से। तो याद रखिए, वो लड़कियां जो कोर्ट मैरिज या अपनी मर्जी से किसी को वली वारिस बनाकर निकाह करती हैं, इस्लाम उस निकाह को नहीं मानता। अल्लाह ताला इस फितने से भी महफूज रखे। और मारूफ तरीके से इनके मेहर अदा करो ताकि वो हिसारे निकाह में महफूज मुहसनात होकर रहें, आजाद शहवत रानी ना करती फिर रहें। आप देखिए, ताल्लुक में भी ये बात है कि ताल्लुकात में लिमिट होनी चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से इन सारी चीज़ों को तुम अब करते जाओ। यानी शोहर बीवी का ताल्लुक प्योर ताल्लुक है, शादी के बाद दूसरी तरफ नजरें नहीं जानी चाहिए, सोच नहीं जानी चाहिए, और ना चोरी छुपे आशनाइयाँ करें। अब ये लफ्ज़ चोरी या छुपे आशनाई को आप देखें अरबी में क्या लफ्ज़ है, अख्दान। अगर आप अरबी में हाईलाइट करना चाहें तो आयत नंबर 25 के अंदर मौजूद है, वला मुत्तखिज़ाती अख्दान। उस दौर में जो लौंडियाँ होती थी ना, वो ज़रा छिछोरी सी होती थी, लड़कों को छेड़ना, लड़की लड़कों की जो थोड़ी बहुत गपशप होती थी ना, वो सिर्फ लौंडियों और गुलामों में होती थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आज अगर कम पढ़े लिखे या बिल्कुल अनपढ़ कोई गांव से आए हुए लोग हैं, किसी के घर में मासी या ड्राइवर बन गए, तो उनके किस्से होते थे, क्योंकि इनको अकल नहीं, समझ नहीं, कम पढ़े लिखे हैं। शरीफ लोगों में कभी ये चीज़ नहीं थी। आज क्या हुआ? आज मॉडर्निज्म का ये एक क्राइटेरियन बन गया, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, फलां जी वो मेरी मेट है और वो मेरी बड़ी है, इस्लाम इसकी कहीं भी इजाजत नहीं देता। हदीस में आता है कि जब भी कहीं एक मर्द और एक औरत तन्हा होंगे, सालिसहुमा शैतान, तीसरा उनमें शैतान होगा। अल्लाह ताला इस फितने से भी बचाए। आज इसकी वजह से भी बहुत बड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्टर्स में आज के दौर में ये छुपी दोस्तियाँ बहुत हैं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, बड़े बड़े ऐड सड़कों के किनारे दिखाए जाते हैं, अब तो सारी रात बातें करते जाए, और एक उछलती हुई लड़की दिखाई हुई ऐड में, एक तरफ लड़का है, बिस्तरों में छुप के माँ बाप से सारी रात बातें करें। क्या हम आपको फ्री में नर्स देते हैं, आप हमारी सिम खरीदें और हम आपको डबल सिम देते हैं, अब तो बातें ही करते जाए। याद रखिए, एक एक क्लिक जो किसी गैर के साथ चैटिंग में हुआ, या एक एक जुमला जो लफ से निकला, अल्लाह ताला उसको अख्दान की सिमत में लेता है। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचा के रखे। फिर जब वो हिसारे निकाह में महफूज हो जाए और इसके बाद बद चलनी की मुर्तकिब हो, तो इन पर इस सजा की बनिस्बत आधी सजा है जो खानदानी औरतों के लिए मुकर्रर की। ये सहूलत तुम में से इन लोगों के लिए पैदा की गई जिनकी शादी ना करने से बंदे तकवा के टूट जाने का अंदेशा हो। देखिए, किसी ने मुझसे चंद दिन पहले सवाल किया था कि उनके बेटे ने कहा क्या शादी फर्ज है, तो ये देख लीजिए, जब एक मर्द को जरूरत महसूस हो रही है और उसको खतरा है कि वो जिना में ना पड़ जाए, उस वक्त शादी फर्ज हो जाती है। नहीं मिल रही आजाद औरत, लौंडी से निकाह कर लो, फिर भी ये निकाह के खुद अपनी मर्जी से दोस्त बना के उसके साथ ख्वाहिश पूरी कर लो। लेकिन अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। अब खूबसूरत कवानीन है, इसको इंसान नहीं बना सकते। मैं तो बिल्कुल इससे हाथ उठाने के लिए तैयार हूँ कि हम इन कवानीन को समझा ही नहीं सकते जितने खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने बताए। तो अब कुछ लोगों को ये चीज़ें बड़ी बोझ लगती हैं। आज देखिए, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, बगैर शादी के रहना इट्स ओके, लिविंग टुगेदर इट्स फाइन, वेडलॉक को वो कहते हैं जैसे ये कैद है। आज अब लोगों से पूछिए, ये आपकी ये बच्चे हैं आपके हस्बैंड के, तो कहते हैं आई डिडंट गेट मैरिड येट। मैंने पूछा एक दो औरतों से रस्तों में जब बात होती है, कहती ना आई एम नॉट मैरिड, पर मुझे कोई शौहर ही नहीं मिला अभी, मुझे कोई मर्द पसंद ही नहीं आया। ट्राई कर रहे हैं अभी, छः छः बच्चे ले लेके एक एक औरत फिर रही है रंग बिरंगे, लेकिन अभी कह रही है मुझे कोई ऐसा मर्द ही नहीं मिला कि जिससे मैं शादी करूँ। ये है वो चीज़ जिसने ख्वाहिशों में डुबो दिया। इस अगली आयत को हाईलाइट कर लीजिए, जब इंसानियत ख्वाहिशों में डूब जाती है तो फिर उसको वही कुछ मिलता है जो कि आज के दौर में हो रहा है। युरीदुल्लाहु लियुबय्यिना लकुम वयहदियकुम सुननल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम वयतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह चाहता है कि तुम पर इन तरीकों को वाज़ेह करे और इन्हीं तरीकों पर तुम्हें चलाए जिनकी पैरवी तुमसे पहले गुजरे हुए सुलहा करते थे, और वो अपनी रहमत के साथ तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा रखता है और अलीम भी है और दाना भी है। हाँ, अल्लाह तो तुम पर रहमत के साथ तवज्जो करना चाहता है। इसको सोचिएगा भी और हाईलाइट भी कर लीजिएगा। मगर जो लोग खुद अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम राह रास्त से हटकर दूर निकल जाओ। हमेशा ख्वाहिश परस्त लोग इस्लाम की इन बातों पे तनकीद करेंगे, और जो साफ सुथरे पाक साफ लोग होते हैं वो कभी भी इन चीज़ों को बुरा नहीं कहते। फरमाया युरीदुल्लाहु युखफ्फिफान कुम खुलिकल इंसानु दईफा, अल्लाह ताला तुम पर से पाबंदियों को हल्का करना चाहता है क्योंकि इंसान कमजोर पैदा किया गया। तो अल्लाह ताला हमें इन सारे अहकाम को पढ़ने समझने सीखने वाला बना दे। अब इसके बाद जो अगली आयत है, इसमें एक दूसरे के माल को नाहक तरीके से खाने से मना किया जा रहा है। दूसरी अगली आयतों में कबायर की बात है। कबीरा गुनाह क्या होता है? किसी को भी कुरान पाक में अगर इससे बारे में कुछ पढ़ना हो तो इन आयतों की तफसीर आप सुन सकते हैं, जिसका हम तर्जमा भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला ताकुलुम वालकुम बैनकुम बिलबातिल। ए लोगों जो ईमान लाए हो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीकों से ना खाओ। लेन देन होना चाहिए आपस की रजामंदी से, और अपने आप को कत्ल ना करो। ये भी हाईलाइट कीजिए, खुदकुशी हराम है। इस्लाम डजंट अलाउ सुसाइड। जो दीन किसी दूसरे को कत्ल करने से मना करे, वो अपने आप को कत्ल करने से कैसे इजाजत दे? हदीस में आता है कि जिसने खुद को कत्ल किया, कयामत तक वो उसी काम से खुद को मारता रहेगा। मसलन किसी ने जहर पिया, कितनी तकलीफ हुई होगी, सिसक सिसक के जान गई होगी, तो वो सिसक सिसक के मरता रहेगा कयामत के आने तक। किसी ने अगर अपने आप को किसी हथियार से, औजार से मारा, तो वो उसी से खुद को मारता रहेगा। यकीन मानो कि अल्लाह तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। आप देखिए, एक माँ के सामने उसके बच्चे को कोई ज़िबा करे तो माँ को तकलीफ होती है? कितना माँ ने वक्त गुजारा, 9 महीने पेट में रखा। तो जिस जात ने उसको एक कतरे से वजूद दिया, क्या वो जात ये पसंद करेगी कि कोई किसी को मार दे या कोई खुद को मार दे? जो शख्स जुल्म ज्यादती के साथ ऐसा करेगा, इसको हम जरूर आग में झोंकेंगे, और ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं। आज के दौर में एक वीडियो बहुत बच्चों में आम हो रही है, मैंने पीछे तस्करा किया था गालिबन वेलकम रमजान के अंदर, तो वो आज के मतलब हॉस्पिटल्स में 2-2 हज़ार बच्चे सुसाइड किलिंग के मतलब अटेम्प्ट्स में या कोशिशों में दाखिल किए जा रहे हैं। और जब पीछे पता किया गया तो कोई वीडियो और कोई गेम्स ऐसी आम हुई हैं कि जिसमें सोल्यूशन बच्चों को जो दिया जा रहा है अपने प्रॉब्लम्स को हल करने का, उसका 52 यानी 52वां नंबर यही है, या उसका आखिरी हल ये है कि तुम सुसाइड कर लो। और छोटे यंग बच्चे, स्कूल कॉलेज मेट जो है, वो ये काम करते आ रहे हैं। हमें अपनी नस्लों पे नजर रखनी है। अपने बच्चों को मसरूफ करें, आप उनको फारिग ना रखें, आप उनको इस्लाम की ये खूबसूरत चीजें बताएं। देखिए, बाज़ दफ़ा शादी की उम्र होती है, माँ बाप शादियां नहीं करते, फ्रस्ट्रेशन में लड़के लड़कियां इस किस्म की हरकतों में पड़ जाते हैं। बस दफ़ा आप उनसे कुछ नाजायज चीज़ों का मुतालबा कर रहे होते हैं, तो हमेशा फितरत पे रखें। इस्लाम का खूबसूरत मिजाज, जब तलब हो तब शादी कर दो। आप देखिए, बच्चा पैदा होता है, दूध पीना है, दांतों की जरूरत ही नहीं। जो ही दांत निकलने लगते हैं, कहा दूध छुड़ा के खाना शुरू करा दो। खाना शुरू कराए, आप जरा दांत मजबूत हो गए, आप रोटी भी खिला दो। पहले चलता नहीं था, अब चलने लगे, तब गोद में थोड़ी उसको बिठाए रहेंगे, उसको चलने दीजिए, थोड़ा गिरेगा कोई बात नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब प्यूबर्टी की एज आई, 12-13 साल है, अब उसमें एक जिस्म में तलब आती है, एक भूख आती है। जिस तरह वक्त के साथ साथ खाना पीना शुरू हुआ था, अब इस तरह जिस्मानी तकाजे आए हैं। खूबसूरत सिक्योर एंड सेफ वे आज की नस्लों को और अपने वक्त और अपनी जिंदगी को बचाने का यह है कि जो ही बच्चों में ये जज्बे शुरू आए, आपको इसी दे सादे तरीके से उनका जोड़ ढूंढे, शादी कर दें। कम से कम उनकी एक जरूरत तो पूरी हो जाए, उसके बाद वो पढ़ें, वो लिखें, वो जॉब करें, वो कैरियर बिल्ड करें, वो मेडिकल में जाएं, वो पायलट बने। कितना सुकून होगा उनको। घर में अपनी बीवी भी साथ है, वो भी पढ़ रही है, आप भी पढ़ लीजिए, वो भी अपने कामों में लगी हुई है, आप भी कीजिए। अब तो ये मायूब लगता ही नहीं है कि शादी के बाद पढ़ना कोई बुरी बात है, सभी पढ़ते हैं, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए, जब ये कहकर नहीं, अभी ये अपने पाँव पर नहीं खड़ा हुआ, भाई ये तो 1.5 साल का खड़ा हो गया था, वो तो भागना लग गया था, नहीं जी अभी इसका कैरियर नहीं बना। यानी शादी इज अ बिग इशू इन आवर सोसाइटी। इसको इतना जूम इन किया हुआ है कि सारी जिंदगी शादी पे मोहित हो गई। 25-30-30 साल तक लड़कों को और लड़कियों को शादी से दूर रखा जाता है, सिर्फ इसलिए कि पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि कमा रहे हैं। आप जरा सोचिए, चारों तरफ तो टेम्पटेशन है, चारों तरफ तो इतना गंद है कि जो उनकी नजरों को गंदा करे। हर शादी से होकर आके वो घर में क्या सोचते होंगे, खानदान के हर वक्त जो मामला सामने आते हैं, जो फिल्में ड्रामे और बाहर की दुनिया में गंद है, उसको देखकर क्या होगा? माँ बाप होने के नाते आपका फर्ज है, कम अज कम अपनी जिंदगी में अपने बच्चों के इन फराइज को सबकदोश हो जाइए। और आप कहते हैं ये अभी छोटे हैं, अकल नहीं, वल्लाही मैं आपको सच कहूँ, आज की बच्ची 12 साल में पहले दौर की 18-20 साल की लड़की से ज्यादा मिजोर है। आज के बच्चे को 8-10 साल की उम्र में वो सब कुछ पता चल जाता है, कुछ स्कूलों से, कुछ फिल्मों से, जो कि बाद में हो सकता है 20-20 साल के लड़कों को नहीं पता होता था। आप बोझ डाल कर देखिए, लड़कियां तैयार हैं शादी के लिए, मुझसे तो नहीं कहती अच्छी बच्चियां, लड़के भी तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उनकी ऐसी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर चुके हों और हकीकत पसंदीदा शादियां हों। अब शादी भी वो करेंगे जिसमें फिर आप कहते हैं अभी हम एक शादी के बोझ से नहीं फारिग हुए, दूसरी कहाँ करें, तो फिर आप दूसरा कोई काम नहीं करेंगे। इस वक्त अगर इंसानियत को कुछ देना है मैंने आपने, एक उम्मत मुस्लिमा का फर्द होने के नाते, खैर उम्मत अखरजत लिन्नास का तकाजा पूरा करना है, जल्दी से अपने बच्चों से फारिग हो, जल्दी से रिलैक्स रहो, उनको उनके घर का करें, वो भी आपके साथ लग जाए। देखिए ना, मुझे भूख लगी है इस वक्त तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मुझे नींद आ रही है तो मैं आपको पढ़ा सकती हूँ, मैं क्यों मुतमईन हूँ कि मेरी ये जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, अब मैं आपको सुकून से पढ़ा रही हूँ। आप पढ़ने आए बैठे हैं, आप अपनी जरूरतों से फारिग होकर बैठे हैं ना, तो जहनों में हैजान हो और आंखों में गंदगी हो और हाथों में ऐसे पुर्जे हो, तो याद रखिए जो गुनाह हो रहे हैं जो होंगे इसकी जिम्मेदारी बड़ों पे आती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, पहली किताबों में लिखा है कि जिसकी औलाद 12 साल की हो गई और उसके बाद औलाद से कोई गुनाह हुआ तो इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं। तो शादी को आसान कीजिए, इतना बड़ा इशू नहीं है। आप देखिएगा, जब शादियां आसान थी, डेढ़ जोड़ा लेकर जाते थे, लड़की लेकर आ जाते थे, 10 लोग गए बारात बना करके, सारे गली को बुलाया, पुलाव की देख पकाई खिला दिया, वो शादियां ज्यादा पायदार थी, वो ज्यादा निपटी थी, वो आते ही लड़कियां भी खूब जाती थी। और छोटी उम्र में शादियां करेंगे ना, आने वाली आपके साथ रच बस जाएंगी। जो बड़ी उम्र की पढ़ी लिखी एक पूरी स्टेब्लिश बच्ची आप घर में लाते हैं, मैं नहीं मान सकती कि वो आपके घर में पलेगी, वो आपके घर में एडजस्ट होगी, उसका पूरा माइंडसेट है। और स्पेशली जो लड़कियां कमाने और जॉब करने लगती हैं, वो मियाँ से क्यों डरे, वो तो खुद कमाती है। मियाँ का एक बड़ा रोग होता है कि महीने के बाद उनसे हमने पैसे लेने, अब वो कहती है रहने दें आप, मैं नहीं लेती, आप मेरे पास पहले ही बहुत है, आपकी गाड़ी मेरी गाड़ी चले, आपका फोन मेरा फोन, तेरी मेरी में दो मुख्तलिफ सोचे हैं। ये बातें कड़वी हैं मुझे पता है, लेकिन याद जिस मसले का हल है कि अगर हम कम से कम अपने मुसलमानों पर ये रूल्स लागू करके देख लें, आप देखेंगे कि हमारे घरेलू जिंदगी इतनी पीसफुल होगी कि इंशाल्लाह फिर वही लोग आगे जाके दूसरों को सर्व करेंगे, अल्लाह ताला ने चाहा। अब इसके बाद कबीरा गुनाह, और नोट कीजिए कबीरा गुनाहों का तस्करा कहाँ आ रहा है, जहाँ शादी के ये सारे डिसऑर्डर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। कबायर का शिकार ही बंदा तब होता है जब उसकी घर से जरूरत पूरी नहीं होती। फरमाया, इन तजतनीबु कबाइर मा तुन्हौना नुकफ्फिरन्कुम सय्यातिकुम, अगर तुम बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जा रहा है, तो तुम्हारी छोटी मोटी बुराइयों को हम तुम्हारे हिसाब से साकित कर देंगे और तुमको इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। कबीरा गुनाह क्या है, इस्लाम ने इसकी कोई लिस्ट नहीं दी कि ये पकड़ लो, ये 1 2 3 है। हाँ, उलमाए कराम ने इस पे कुछ चीज़ें नोट की हैं, मसलन जिस गुनाह पे हराम का लफ्ज़ आ गया वो कबीर है, इसी तरह जिस पे जहन्नुम की वाइद है वो कबीर है। इमाम ज़हबी हैं, अल कबायर नाम की उनकी बुक है, उसमें उन्होंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। सबसे कबीरा गुनाह तो शिर्क है, अल्लाह के साथ किसी को एसोसिएट करना, और इसके बाद इसकी लंबी लिस्ट है, हम इसको काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में देखते हैं, आप लोग ज़रूर देखें। मैं तो अपने लिए और आपके लिए एक क्राइटेरियन देती हूँ, हर गुनाह को कबीरा गुनाह समझें, क्योंकि वह अल्लाह अकबर की नाफरमानी है। इतनी बड़ी हस्ती आपको किसी काम से रोके, तो आप ये पूछेंगे कि अच्छा कितना को गुना है इसको छोड़ने का, ये हराम है कि मकरूह है। आप बच्चे से के पानी लाओ, तो बच्चा कि अच्छा मामा अगर मैं ना लाऊं तो ये हराम है, और अगर मैं पानी ना लाऊं तो ये मकरूह है। अच्छा भला मैं हमेशा से आप मेरे से नाराज रहेंगी या एक दिन बाद ठीक हो जाएंगी, थप्पड़ मारेंगी आप उसके मुंह पे, भाग जाओ मुझे तुमसे पानी नहीं लेना। तो असल बात ये कि आपकी बात कौन रद्द कर रहा है, आप कौन है। तो ये वो लोग पूछते हैं फर्क जिनको वो करने होते हैं गुनाह, वरना तो ईमान वाले छोटे छोटे गुनाह से डरते हैं। सहाबा कराम कहते हैं कि हम में से कोई ऐसा था कि छोटा सा गुनाह होता था तो उसको ऐसे लगता था तो उसके सर पे पहाड़ है और अभी उसके सर पे गिरेगा, लेकिन आज लोगों का हाल क्या हो गया कि बड़े बड़े गुनाह करके नाक पे मक्खी की तरह उड़ा देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें जो गुनाहों का वबाल है उसका एहसास दिलाए और हम अपने आप को इससे रोक सकें।